તારીખ 5/2/1989 પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 94 અને 95 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 82
जीव का कार्य क्षेत्र का विषय चल रहा है। जीव अपना परिणाम रूप कार्य को करता है, अपना परिणाम रूप कार्य को भोगता है। किसी परद्रव्य के परिणाम रूप कार्य को कर नहीं सकता और किसी परद्रव्य के परिणाम रूप कार्य को भोग नहीं जा सकता है।
आगे
सभी पदार्थ अपने अपने परिणाम रूप कार्य को करता है, भोक्तृत्व गुण जीव नामक पदार्थ में है। पांच अजीव पदार्थ में भोक्तापने का गुण
नहीं है।
विदग्धता कहो या भोक्तृत्व कहो, दोनों एक बात है, या अनुभव करना, तीनों एक बात है। दृष्टांत दिया कि मुख में लड्डू रखें फिर भी लड्डू का मीठा स्वाद ज्ञान में प्रतिभाषित हुए, फिर भी वो स्वाद जीव को वेदन ज्ञान अलग चीज है, वेदन करना अलग चीज है, ज्ञान दर्पण जैसी चीज है जिसमें प्रतिबिंब दूसरे पदार्थ का प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन वेदन जैसी चीज नहीं है कोई कि दूसरे पदार्थ को का वेदन भी कर सके, ऐसी कोई बात है। अपने परिणाम को भोगता है तो लड्डू खाने के काल में लड्डू खाने का परिणाम को वो भोगता है। जी लड्डू खाने का परिणाम रूप जो राग है उस राग को भोगता है, लेकिन लड्डू को नहीं भोगता है। या अपने राग का वेदन करता है, लड्डू खाने संबंधित अपना राग का वेदन करता है, लेकिन लड्डू का वेदन नहीं करता है।
लगता तो ऐसा लड्डू का वेदन करता हूं
ऐसा लगता है, लेकिन वो तत्व दृष्टि इसमें नहीं है।
नहीं,
यहाँ जो बात चलती है वो तत्व दृष्टि की चलती है।
बराबर।
अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जीव किसको करता है और किसको भोगता है, लड्डू खाने के काल में कि वो अपना परिणाम को करता है और अपने परिणाम को, अपने रागादि परिणाम को भोगता है, पर पदार्थ को करता भी नहीं पर पदार्थ को भूलता भी नहीं। मैंने लड्डू का टुकड़ा भी जीव ने नहीं बनाया और उसका स्वाद भी जीव ने नहीं भोगा। माना जरूर कि मैंने ये लड्डू का टुकड़ा कर दिया और मैंने खाया, लेकिन आत्मा में एक परिणाम खा करके मिला दिया हो, एक परमाणु को मिला दिया हो, जीव तत्व में परमाणु तत्व का कोई एक अंश भी मिलावट हो गया हो ऐसा नहीं बना।
नहीं,
परमाणु नहीं मिला है, लेकिन परमाणु का स्वाद तो मिला भी नहीं जीव को, स्वाद को जाना है, स्वाद मिला है तो बात नहीं है। स्वाद को जाना अवश्य है लेकिन स्वाद मिला है तो बात नहीं है। ये बात तत्व दृष्टि से समझ में नहीं आवे तो अपने अनुभव को और बारीकाई से उनके तलाश करना पड़ेगा। ये बात सीधी समझ में नहीं आवे कि नहीं, लड्डू तो मैं खाता हूं और लड्डू का स्वाद को भी मैं भोगता हूं और यहाँ शास्त्र में इस बात का निषेध है, तो वास्तव में क्या ये बात सही है या नहीं है, सही नहीं है, इसको अच्छी तरह अपना अनुभव को बारीकाई से सूक्ष्मता से उसकी खोज करके इस विषय की तलाश करके समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक जैसे कहते हैं वैसा अनुभव नहीं आए वहां तक इसकी खोज चालू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देव गुरु शास्त्र ने कहा है इसलिए सच है, क्योंकि ये तो देव गुरु शास्त्र जो कहते हैं वो तो सच ही होता है, वो तो गलत कैसे हो सकता है, वो झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन अपने अनुभव जो करते हैं वैसा ही करते रहो, यानी लड्डू अच्छा लगता है, मुझे तो लड्डू अच्छा लगता है, तो शास्त्र कहते हैं वो भी सही, पर मुझे अच्छा लगता है वो भी सही। ऐसा नहीं चलना चाहिए। दूसरा दृष्टांत, शरीर में तीव्र रोग हुआ हो, शरीर में वेदना तीव्र चलती हो, उस वक्त जीव जड़ रोग को नहीं भोगता। ये बात और कठिन है, लड्डू वाली बात तो ठीक है कि एक दो लड्डू खाते हैं वहां तक तो मीठा अच्छा लगता है और फिर कहते हैं कि नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी और ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे तो ये वॉमिट हो जाएगा। तो जितना राग से वो खाता है उतना द्वेष से उसको निषेध भी कर लेता है। यहाँ तो दो बात बनती है, लेकिन वेदना में किसी को वेदना पहले अच्छी नहीं लगे फिर बाद में अच्छी लगे फिर अच्छी नहीं लगे, ऐसा तो नहीं होता। और शरीर में देहात्म बुद्धि से देह में आत्मबुद्धि ऐसा परिणाम बहुत तीव्र दृढ़ हो गया है, इसलिए शरीर का वेदन में आत्मा का जो वेदन है ऐसा अनुभव हो रहा है, मेरा वेदन है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, ऐसा हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे जड़ के रोग मैंने शरीर की अवस्था उसको भोग नहीं सकता। जैसे बालू में से लड्डू नहीं बन सकता,
बराबर नहीं बनता,
ऐसे वो बारीक मारवाते हैं जो चूरमा के कलर के हो, ऐसा ही कलर होता है चूरमा का, आटे का
लड्डू नहीं बने,
उसमें लड्डू नहीं बने, उसमें गुड़ डाले, घी डाले, शक्कर डाले, कुछ भी डाले, बनेगा लड्डू
नहीं बने,
तो बन ही नहीं सकता। वैसे जीव अजीव की अवस्था को कर भी नहीं सकता, भोग भी नहीं सकता, उसको वेदन भी नहीं कर सकता, तो लगता है इसका क्या। अब समस्या ये है कि हमें तो लगता है, भले आप सच कहते होंगे देव गुरु शास्त्र है, पवित्र है, मित्रादि है, सच कहने वाले हैं, गुरु है तो महाव्रत सत्य महाव्रत धारी है, वृषा भाषण नहीं करते, वृषावाद नहीं करते, लेकिन हमको तो वेदन में आता है, पीड़ा हमको हो रही है, समस्या तो वहां है। कहते हैं कि अपना अकेला ज्ञान वेदन को वेदने का पुरुषार्थ करने से शरीर की वेदना को भी मेरे में नहीं हो रही है, शरीर की वेदन रूप अवस्था मेरे आत्मा में, मुझे जो आत्मा मेरा है उसमें नहीं हो रही है, मेरे ज्ञान में नहीं हो रही है, आत्मा में नहीं हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। यही वेदना के काल में वेदना से छूटने का एकमात्र उपाय है, वरना वेदना के काल में न पैसा उस वेदना को मिटा सकता है, न दवाई इस वेदना को मिटा सकती है, न डॉक्टर इस वेदना को मिटा सकता है, भले अपना पुत्र हो डॉक्टर, और न परिवार कोई अपनी वेदना को ले सकता है। वेदना से छूटने का कोई जगत में उपाय नहीं है, पेन किलर सब फेल होता है, होता है कि नहीं होता है, पूरे के पूरे पेन किलर दिए थे, कुछ नहीं
असर ही नहीं
लगा, जो नींद का है ब्रेन का इंजेक्शन दे कुछ असर नहीं, कुछ हो ही नहीं, दवाई भी डॉक्टर कहते हैं कि कुछ मात्रा में उसकी असर होती है, कुछ मात्रा के मैंने मंद खुद इनके असर में आ जावे ऐसा परिणाम होवे तब, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेदना को ले सकता है, मिटा सकता है, ऐसी बात
नहीं है,
इससे भिन्न होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है,
एक ही रास्ता है,
भिन्न तो है ही, स्वरूप से तो भिन्न ही है, भिन्न है ऐसा भिन्न अनुभव में ले रहे, तब भिन्न किया ऐसा कहने में आ जाता है, एकमात्र उपाय वेद ज्ञान का गहराई से विचार करने से इस बात का पता चलता है कि जिस वेदना से जगत का प्राणी छूट नहीं सकता, उस वेदना से जो भी वेदना के काल में मुक्त हो गए ऐसे भेद ज्ञान की क्या कीमत करे, क्या कीमत करे इसकी,
मूल्य है क्या,
जहां जगत के कोई भी साधन व्यर्थ हो जाए बेकार हो जाए, वहां एक ही ये साधन है, वेद ज्ञान से ऐसी दशा जिसने सहज रूप बना ली है, मुनिराज उसको भी रोग होता है, पूर्व कर्म के उदय से मुनिराज के शरीर में भी रोग का उदय होता है, ये सनत कुमार चक्रवर्ती गलत को मुनि दशा के बाद मुनि दशा लेने के बाद ये हुआ, चक्रवर्ती को तो ऐसे पुण्यशाली कोड नहीं होता, अंगीकार करने के बाद ऐसा हो गया, कोई उसको उसकी वेदना नहीं है, न उसको वेदन करते हैं, कोई विषय जंतु है, बीची है, कान खजूरा है, सर्प है, कोई काटे और विष के हिसाब से वेदना चालू हो जाए, मुनि उसको भोगते नहीं,
मुनि क्या करते हैं,
मुनि ज्ञानानंद में आवाज करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा, उस आत्मा में मौज करते हैं, क्या है कि ऐसा सत चित स्वरूप आत्मा या आनंद स्वरूप आत्मा सत में मौजूद है, सत में प्रकट है। सुदानंद जी पर सुंदर बात करते हैं, वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है। क्या कहते हैं? अपनी आत्मा अपने परम स्वभाव स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परम स्वभाव में स्वभाव को अध्याय कर दिया, परम शब्द को रख लिया, स्वभाव मैंने आत्मा, परम आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप आत्मा सत मैंने मौजूद पड़ी है, सर्व काल में मौजूद पड़ी है, मात्र कल्पना नहीं करना। इस बात का निषेध किया कि इसके विषय में तुम एक विकल्प उठाओ कि मैं ऐसा परमात्मा हूं, तो मन के संग में ये उपयोग जाएगा। इधर जो मन है, उस मन के संग में ये उपयोग जाएगा, एक कल्पना करेगा कि ऐसा परमात्मा स्वरूप हूं। ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करना। विचार में, विकल्प में ऐसे परमात्मा को नहीं लेना, ऐसा कहते हैं।
इससे भी आगे क्या बात है?
तो बहुत तेज बात है ना, सब बात बहुत तेज है। क्या करना? कि ऐसी कल्पना नहीं करना, विकल्प नहीं करना, लेकिन उस रूप हो जाना। जैसे लड्डू का मिठापन और वो जड़ का पर्याय है, शरीर की वेदना झटके पर्याय है, उस रूप हो जाता है। द्रव्य क्षेत्र से, काल से, भाव से सदंतर पूरी की पूरी बिल्कुल भिन्न चीज में उस रूप हो जाता कि नहीं हो जाता?
हो जाता।
तो मुझे वेदना हो रही है, मुझे सहन नहीं होता है, मुझे वेदना हो रही है, उस रूप होता है कि नहीं होता है? जीव को परद्रव्य की पर्याय रूप होने का अभ्यास है, और स्वयं के स्वरूप के बारे में उस रूप होने के लिए प्रश्न उठाता है, कैसा करें? कि जैसे वहां करता हो वैसे यहां करो। तो बोले कि वहां तो वेदन आता है। क्या कहे? प्रश्न करता है कि वहां तो वेदन आता है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हम ये पूछते हैं कि तुझे तेरा ज्ञान वेदन का वेदन नहीं आता है क्या? वेदन करना तो ज्ञान का स्वभाव है, न शरीर का स्वभाव है, न लड्डू का।
बराबर।
शरीर का स्वभाव होता तो मुर्दे में भी वेदन होता, मुर्दे में भी रोग रोग तो चालू रहता है, चला जाता है आत्मा, खाली खोखा पड़ा रहता है तो उसमें लोह लोह की जगह पानी हो जाता है। जिसको ये होता है ना हैवी एनीमिया, एनीमिक कंडीशन, तो उसको तो लोहे का पानी हो जाता है, मरते साथ ही उसको उसके वजन में से लोहे नहीं निकलता, काटे तो पानी छूटता है। तो अगर शरीर की विकृति नाम रोग, शरीर की विकृति अर्थात रोग, उसकी वेदना होती तो मुर्दा को भी होती। वेदन करने वाला जीव का ज्ञान स्वभाव है, और उस ज्ञान में स्वयं को वेदन करने के अलावा दूसरों को वेदन करने की गुंजाइश ही नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, खाली जगह है। लेकिन इस दृष्टि से अपने ज्ञान को कभी देखा नहीं, या इस दृष्टि से अपने ज्ञान का कभी अनुभव किया, ईश्वर पर प्रकाशक की चर्चा चलती है तो ये बात आती है कि जीव पर पदार्थ को जान सकता है लेकिन वेदन कर सकता नहीं। स्वपर प्रकाशक में जानने का प्रतिबिंब के हिसाब से कहा, जानने की पर्याय अपनी परद्रव की आकृति उठी हो ज्ञान की पर्याय, लेकिन वेदन तो ज्ञान का ही होता है, परद्रव का वेदन हरगिज होता
नहीं।
इस बात को समझ करके प्रयोग से इस बात को अच्छी तरह प्रैक्टिस में लेकर के अगर वेद ज्ञान से भिन्न वेदन करने की कला या विद्या, अध्यात्म विद्या जिसको कहते हैं, वो जो साध्य साधने में आती है, तो रोग के काल में भी जीव रोग की वेदना से अतिरिक्त भिन्न अपने ज्ञान का अनुभव अच्छी तरह करता है, कर सकता है बराबर, और यही एकमात्र दुख से छूटने का उपाय है। दूसरे दुख में तो अलग अलग कल्पना कर लेता है जीव, लेकिन वेदना में क्या करेगा। चलो संपत्ति चली गई तो ठीक है, जैसा है वैसे चलाएंगे, कोई भी बाना पकड़ लेता है, आधार पकड़ लेता है, वेदना में क्या करेगा। यहां तो कहते हैं कि ये वेद ज्ञान कोई ऐसी अध्यात्म विद्या है कि जिसको साधने से किसी भी प्रकार का दुख होवे ही नहीं, जीव को होवे ही नहीं। मास्टर की सभी दुखों को दुखों से छुपने के लिए एक मास्टर की
पद्धति रखी है, उपाय तो
यहाँ तो एक बहुत सरस बात है। उस रूप तन्मय हो जाना, उस रूप हो जाना मैंने तन्मय होकर असंख्य प्रदेश में व्याप्त हो जाना है। कैसे कहा कि कल्पना में तो तू मन के संग उपयोग लगाता है, अब उपयोग को असंख्य प्रदेश में ले जा, तेरा जो पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर यहां तक, बस उसमें उपयोग पूरा का पूरा पूरा क्षेत्र में व्याप्त व्यापक भाव से अनुभव कर आत्मा का। मन के संग से कल्पना उठेगी कि आत्मा परमात्मा है, ऐसा नहीं, ये साधन नहीं, विकल्प साधन नहीं है, ऐसा साधन नहीं। तन्मय होकर असंख्य प्रदेश में व्याप्त हो जाना, क्योंकि असंख्य प्रदेश में परमात्म स्वभाव वस्तु साक्षात है। कल्पना इसलिए नहीं करना कि जब वस्तु साक्षात मौजूद है फिर मात्र कल्पना क्यों करना। सवाल उठाते हैं जोर से कि फिर कल्पना क्यों करना, जब वस्तु मौजूद है फिर प्रकट है, फिर उसकी कल्पना क्यों करना। उसको परिणाम दा, परिणमन में वो स्वरूप परिणम हो जाओ, परिणमन में कल्पना क्या उठाते हो। हाँ बहुत बहुत ध्यान ध्यान की ये विधि, मन के संग से उपयोग को छुड़ाकर असंख्य प्रदेश में एकाकार साक्षात परमात्म स्वभाव में उस रूप अनुभव करने के ध्यान की ये बहुत जोरदार विधि है। ध्यान का आधारभूत चीज है, द्रव पकड़ने में आता है असंख्य प्रदेश से, पूरी जो वस्तु जो है वो साक्षात द्रव को ग्रहण करता है, द्रव को ग्रहण कर लेने के बाद, क्योंकि ये जो ज्ञान लक्षण से आत्मा स्वभाव लक्षित होता है लेकिन लक्षण पर्याय में प्रकट है, और मात्र पर्याय रूप अवधारण करने की पर्याय बुद्धि में आदत हो गई है, फिर भी रास्ता यहां से है, पर्याय पर से द्रव पर चले जाने का रास्ता है। प्रवेश द्वार तो पर्याय है, उपयोग द्वार है, जहां परमात्मा खड़ा है वो उपयोग द्वार है। फिर भी द्वार में नहीं रुकने का,
द्वार
है परमात्मा, परमात्मा
वाह।
ये बात जैसे दो तीन चार बोल हैं, दो सौ चौपन नंबर में ऐसा ही है कि मात्र विचार करने से वस्तु का पता नहीं चलता। ये हमेशा चर्चा चलती है कि विचार एक बात है, प्रयोग एक दूसरी बात है, जो विचार से आगे हैं, एक कदम आगे है उसे। तो कहते हैं कि मात्र विचार करने से वस्तु का पता नहीं चलता, यानी आत्मा का अनुभव नहीं होता। वस्तु तो प्रत्यक्ष मौजूद है, बस इसी में प्रसर कर बैठ जाना, प्रसर कर इसमें विराजमान हो जाना है। असंख्य प्रदेश को वस्तु में आत्मा केवल ज्ञान परमानंद आदि का पिंड हूं, शरीर से कोई संबंध नहीं है मेरा। एक हीरा जैसे एक डिब्बी में रखा जाता है, ऐसा चैतन्य हीरा की एक डिब्बी है।
डिब्बी है, डिब्बी अलग है, चेतन से अलग है।
हीरा और डिब्बी का मूल्य एक सा कैसे हो सकता है? ये तो बारदाना है, डिब्बी तो क्या है,
बारदाना
माल तो असल चीज दूसरी है। नए पक्ष में आत्म स्वरूप का विचार विकल्प भी नए पक्ष में जाता है, स्वभाव का विकल्प भी नए पक्ष में जाता है। इससे भिन्न हो जाने की बात ऐसा 180 में लिया है कि वस्तु वर्तमान में प्रत्यक्ष पड़ी है, अभी वर्तमान मैंने अभी ही प्रत्यक्ष मौजूद पड़ी है, वर्तमान में ही मौजूद है, एक समय के पर्याय के पीछे कोई अंतर नहीं,
अंतर नहीं। इधर
दर्पण का दल और दर्पण की अवस्था बीच में कोई अंतर
नहीं
है। जहां प्रतिबिंब उठता है वो दर्पण की अवस्था है, हाँ, और इसके पीछे पूरा का पूरा कांच का दल है, बीच में क्या अंतर है कि ये अवस्था के पीछे पूरा का पूरा दल खड़ा है, पड़ा है। वैसे ज्ञान की अवस्था जहां से उठती है, उस जो भूमि है, नक्कर भूमि, असंख्यात प्रदेश है, तो आंखी की आंखी पूरी वस्तु, अखंड वस्तु वहां खड़ी है, पड़ी है। बस अवस्था में उसका लक्ष्य करे, इधर सन्मुख होकर भीतर में अंतर्मुख होकर के इसका लक्ष्य करे, उतनी देर है, इससे ज्यादा कोई देर नहीं।
बहुत चला कर दिया, सदर कर दिया,
बस इतना
इतना ही है।
अपना परमात्मा अपने से कितना दूर, चतुरांगुल है, दृग्स है, मिले है, कोई दूरी नहीं। चतुरांगुल मैंने कुछ दूर नहीं,
सदा खड़ा ही खड़ा है, ये काम करता नहीं है, सदा खड़ा ही है परमात्मा, तो
खड़ा ही रहता है, बैठता ही नहीं, जगाता है। कोई जीव पाप करता है तो अंदर से निषेध करना है, ऐसा मत करना। तो ओवरटेक करता है दूसरी बात है, लेकिन अंदर से तो वो अलार्म बजाता है, घंटी बजाता है, ये नहीं करना। फिर भी करता है तो फिर दुखी बहुत होता है, फिर भी अपराध करता है तो आकुलता उसको मिलती नहीं है, ये परिस्थिति हो जाती है। यही उसको जागृत करने की चीज है कि ऐसा क्यों कि अंदर में निर्दोष परमात्मा है, स्वभाव निर्दोष है, उसको बर्दाश्त नहीं करता है, अवस्था में होने वाले अपराध को वो सम्मत नहीं करता है।
प्रतिबिंब पकड़े स्वच्छता ने रखे पकड़ते
स्वभाव में नहीं पकड़ता। स्वच्छता भले स्वच्छता पर्याय रूप है, स्वच्छता स्वभाव पर
स्वच्छता
ज्ञानी पर्याय है, ज्ञानी पर्याय पर्याय रूप पण स्वच्छता छे ने स्वभाव पण स्वच्छ छे। तो मात्र पर्याय नु उदाहरण नथी लेवू, पण पर्याय ऊपर थी स्वच्छ स्वभाव ने ध्यान करे। સ્વભાવ પણ સામાન્ય છે, સ્વચ્છતા પણ સામાન્ય છે। એટલે સામાન્ય નો આવિર્ભાવ કરવાની વાત કરી છે, ત્યાંથી જ રસ્તો ત્યાંથી જ મળે છે। કહેતે હૈ કે શરીર મેં તીવ્ર રૂપ હુઆ હો ઉસ વક્ત ભી જીવ જડ રોગ કો ભોગતા નહીં, ભોગ સકતા નહીં ઇસલિયે ભોગતા નહીં। મિથ્યા બુદ્ધિ સે શરીર કી વેદના કો રોગ કો મેં ભોગતા હું એસા માન કરકે એસા જાન કરકે એસા અધ્યવસિત હો કરકે મિથ્યા અનુભવ કરકે દુખી હોતા હૈ, દુઃખ ભોગતા હૈ। વેદના તો નહીં ભોગતા હૈ, લેકિન વેદના સંબંધિત દુઃખ કો એવો ભોગતા હૈ, ક્યોંકિ એ ખુદ કી પર્યાય હૈ। સુખ ઓર દુઃખ કી જો પર્યાય હૈ વો જીવ કી પર્યાય હૈ।
इतने टाइम में भी वो सुखी हो सकता है,
उसी वो सुखी हो सकता है अच्छी तरह,
अच्छी तरह से।
सब जो सम्यक दृष्टि जीव नरक में अभी विद्यमान है,
हाँ जी
बहुत से हैं, वो भी अंतर सुतर से घटा घटी सप्तम नरक में भी वो आनंद को सुख को इससे अनंत में भाग की भी तकलीफ नहीं है। ऐसे क्या इससे अनंत में भाग की कोई तकलीफ नहीं है। तो वहां भी जिस ताकत से वो भिन्न हो जाता है। अब यहाँ तू कहते हैं कि मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता है, क्या करूं मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता है, ये तो बहुत जैसे कहेंगे एक मान रखा है और मार भी है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सकता, मेरे से नहीं होता, मेरे से क्यों नहीं होता है, अंदर से जोर कर रहा है कि जब इनको होता है बहुतों को हुआ,
दोनों अनंत होते
हैं, अनंत के लिए सिद्धार्थ मेरे जैसे ही थे, तो मैं क्यों नहीं करूं।
होता भी है देखता नहीं, होता भी है देखता नहीं।
हाँ सिर्फ जैसा है वैसा देखना है, करना कुछ नहीं है, करने की कोई उपाधि नहीं है इसमें। आत्मा सदा उपयोग स्वभावी, उपयोगधारी उपयोग स्वभावी, उपयोगधारी है, कल्पना तो करने की जरूरत नहीं,
नहीं, नहीं।
इसलिए उपयोग स्वभावी आनंदमय बना बनाया हुआ है, कोई उसको बनाने के लिए कोई बात नहीं है, ऐसा श्री गुरु कहते हैं कि ऐसा है, ऐसा तू उसको देख, सिर्फ देखना उतना ही कर्तव्य है, जैसा है वैसा देखना उतना ही कर्तव्य है, इससे ज्यादा कोई कर्तव्य नहीं। धर्म हुआ ऐसा देखा उसी का नाम
धर्म,
वत्तुभावो धर्म। बाकी सब धर्म की बातें हैं, धर्म कहीं भी नहीं।
मुनिराज आश्चर्य कहते हैं तो वो अच्छो से लोग तो नहन करे लोग
एक समय सार में कलश आता है कि फिर जगत के प्राणी अज्ञानवश ऐसा क्यों करता है, ऐसा आत्मा प्रसिद्ध है तो फिर भी उसको छोड़ करके दूसरा पदार्थ को भोग नहीं सकता है, फिर भोगने का पुरुषार्थ करके कर क्यों हैरान होता है, क्या दुखी होता है।
तो बीजा माटे पहले पुरता माटे आश्चर्य था कि आटलू सेल हो तो नरक का है नहीं।
उनका तो अनुभव तो सब बात का हो गया कि क्या उल्टा भी कैसे जाता है, सुलटा भी कैसे जाता है। पुरुषार्थ उठाने के लिए शैली होती है, यानी कि शुद्ध आत्मा के अनुभव में धर्मी जीव, धर्मात्मा जीव शुद्धात्मा के अनुभव में मुख्य तौर से राग द्वेष का कर्ता भोगता नहीं, आंशिक रूप से परिणमन राग का उसका है और थोड़ा दुख भी उसको भोगने में आता है, इसलिए फिर भी ये गौण है। तो कहते कि मुख्य तौर से वो कर्ता भोगता नहीं है,
जी है।
किंतु स्वभाव दृष्टि में फिर किसको करता है मुख्य तौर से, स्वभाव दृष्टि में निर्मल पवित्र धर्म के पर्याय को अवस्था को करता है और उसी काल में आत्मा के आनंद को भोगता है, भाव दुख को भी भोगता आनंद को ये भोगता है। और ये वेदन का सारा जो बोल है उसमें आत्मा की वेदकता क्या चीज है उसको दर्शाने का प्रयास किया है। आत्मा में जो वेदकता है वो किस चीज की, क्या आत्मा लड्डू को वेदता है, क्या शरीर की वेदना को वेदता है, या ज्ञान वेदना को, आनंद की वेदना को आनंद से वेदता है, क्या है देख तो सही। तो कहते हैं कि ये वस्तु स्थिति तो यह है, फिर कल्पना करके रस्सी में सर्प मान करके भयभीत हो जाए, फिर भी रस्सी तो सर्प होने वाली नहीं, का सर्प रस्सी का सर्प काटने वाला, लेकिन फालतू दुख होगा, क्या होगा
फालतू दुख,
फालतू दुख होगा। घर में कहीं रस्सी ऊपर रखी हुई पड़ गई होनी चाहिए और रात्रि को शाम को थोड़े बहुत अंधेरे में कमरा खोले और लगे कि कोई सर्प आ गया, घर में कोई
सर्प आ गया,
आ गया, अब क्या करे, घर में सर्प करे भी क्या, जहां तक वो निकले नहीं वहां तक तो दुख छूटे नहीं, भाई है वो दुख दुख देता है,
भाई लग गया,
भाई गिर गया, भाई का इतना भयान्वित हो गया कि जहां तक वो तो अपने आप चलने वाली नहीं, रस्सी तो अपने आप जाने वाली नहीं, तो ये कि अपने आप चला जाए तो अच्छा है, मैं तो उसको पकड़ सकूं, वो मैं तो उसके नजदीक भी जाने की हिम्मत नहीं, और वो जा रहे नहीं और इधर भाई मिटे नहीं, बस यही हालत है जी।
सच्चा ज्ञान हो गया जब
ऐसे अज्ञान मिथ्यात्म में सप्त भय से ग्रसित है ये जी, मेरा इस भोग में क्या होगा, मेरा पर भोग में क्या होगा, मेरा कोई चुरा लेगा तो क्या होगा, कोई मेरी रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कोई रोग की वेदना हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, सब प्रकार का उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, अखंड आत्म स्वरूप में
कुछ हो सकता,
कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अपना बेभानपना है तो सातों भाई जो है वो क्रमशः होते रहते हैं और उसकी परिणति निरंतर होती रहती है। क्यों मिथ्या दृष्टि जीव अनंत दुखी है, कि उपयोग तो कभी कभी उदय आता है तब होता है, लेकिन परिणति तो हमेशा बनी रहती है, इसलिए सप्त भय से ग्रसित है, भय का दुख अनंत दुख मिथ्या दृष्टि को कभी जाता नहीं। असम्यक दृष्टि कहीं भी हो, चार गति में कहीं भी हो, निर्भय है, निशंक है, निर्भय है, और ज्ञानम सदा निंदति, ज्ञान का ही वेदन करता है, ज्ञान में अपना सुख और आनंद का ही वेदन करता है, दूसरा का वेदन नहीं करता। निशंक सततम सहज स्वयं ज्ञानम सदा निंदति, ये सात कलश लिए हैं निर्जराधिकार में अमृत चंद्राचार्य देव ने समझा दिया। ये चौरान हुआ पंचान, स्वरूप की जागृति के विषय में कुछ मार्गदर्शन दिया है और जागृति, स्वरूप की जागृति करने के लिए जागृति के विषय में मार्गदर्शन है। उदय में कोई तीव्र प्रतिकूलता आ जाए, क्या कहते हैं, ऐसा भी संसार में बनता है कि बहुत तीव्र प्रतिकूलता का उदय आता है, ऐसा हो जाए, या कोई कठोर तीव्र कठोर आकरा, मैंने तीव्र कठोर काठियावाड़ी भाषा में आकरा शब्द बोलते हैं, तीव्र कठोर मर्म छेदक वचन कहे, मर्म मैंने हृदय स्पर्शी, हृदय स्थान को मर्म स्थान कहते हैं, ऐसा कठोर वचन कहे, ऐसे कह दे क्या आपने ऐसी बात कही, हमारा तो कलेजा कट गया, कहते कि नहीं कहते, कलेजा का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, काट दिया आपने हमारा हृदय को, काटा है,
काट दिया,
ऐसा कह करके आपने हमारा
हृदय को काट दिया,
काटा है, ऐसा कोई वचन कहे उस वक्त, अब इस वक्त क्या करना,
क्या करना,
ये दुख का प्रसंग है, क्या है ये
दुख का प्रसंग,
ये दुख का प्रसंग है, कोई प्रतिकूलता तीव्र हो जाए या कोई ऐसा बहुत नीचे दर्जे से हल्के दर्जे से अपमान कर लेना, ऐसा
सबके सामने ऐसा
सारी भरी सभा में, भरी समाज में
बाबा मेरा अपमान कर दिया,
ऐसा बोल दिया, उस वक्त क्या करना है, गुरुदेव ने तो बहुत,
गुरुदेव तो बोले
तारी बुद्ध है, जीव को
मोक्ष ले गया, हाथ पकड़ के ले गया, रक्षक है,
तो श्री गुरु देह में स्थित उस वक्त क्या करना,
क्या करना समझाओ,
तो उसी वक्त इस देह में रहा हुआ स्थित, मैंने रहा हुआ परमानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके देह का लक्ष्य छोड़ देना, बस ना। आराधना का विषय बहुत संक्षेप वाला है, लंबी चौड़ी कोई माथापच्ची से इसमें नहीं कर लेते, इस नई से ऐसा है, उस नई से ऐसा है, न्याय का विषय कठिन है और न्याय का विषय इतना भेद प्रभेद वाला है और इतना समझने में भी कठिन है कि बहुत माथा डाले तो आकुलता हो जाए इसमें, न्याय का विषय, साधना का विषय ऐसा नहीं, साधना का विषय में तो बस देह में स्थित अपना परमानंद स्वरूप आत्मा,
आत्मा
बस ये मैं हूं, ये मैं हूं, बस अपना अस्तित्व को ग्रहण कर लो, जैसा स्वरूप है उस रूप अपने अस्तित्व को ग्रहण कर लो, समता भाव हो जाएगा,
समभाव
हो जाएगा, कोई आकुलता नहीं होगी, न उदय के प्रति द्वेष होगा, न कठोर वचन के कहने वाले के प्रति द्वेष होगा, ज्ञान होगा उसका, ज्ञान ऐसा होगा, ज्ञान बहुत अच्छा होता है कि इस जीव को बेचारे को कुछ कल्पना हुई है मेरे विषय में, क्योंकि दरअसल मैं ऐसा तो मैं हूं नहीं, मैं तो परमानंद स्वरूप परमात्मा हूं, मेरे विषय में कुछ कल्पना हो गई है कि ये मेरा वैरी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्रतिस्पर्धी है, मेरा ऐसा है, मेरे सामने खड़ा है ऐसा, बेचारे कोई कल्पना हो गई है, कल्पना के वश वो अपने स्वरूप को भूल गया है और आकुलित हो गया है, और आकुलित होने से इसके कुछ वचन योग में ऐसा वचन भी छूट गया है, ये कोई मेरे में नहीं, न वो आत्मा मेरे में, न इसका अज्ञान मेरे में, न इसका क्रोध मेरे में, द्वेष मेरे में, न इसका वचन मेरे में, मेरे तक तो कोई पहुंचते ही नहीं, मेरा परमानंद स्वरूप में किसी की स्पर्श ना है। और वो ज्ञान हुआ कि उसको ऐसा हुआ, ऐसा जो ज्ञान हुआ ये भी पर्याय की सीमा में मर्यादित है, मेरे परमानंद स्वरूप में इसका भी प्रवेश
नहीं है।
पर लक्ष्य से पर सन्मुख उपयोग से ये ज्ञान हुआ कि इस जीव को ऐसा क्रोध हुआ, ऐसा द्वेष हुआ मेरे प्रति, इस उपयोग का भी मेरे में प्रवेश
नहीं है, परमात्मा इतना बैठा है
ऐसा मैं परमात्मा स्वरूप,
वाह
मेरे स्वभाव में इसकी पहुंच नहीं, पर्याय ऊपर ऊपर तीरती है, मैं भीतर में अखंड ज्ञान घन पुरुषाकार जो हूं, जैसा का जैसा सदा ऐसा ही हूं जो वर्तमान में दिख रहा हूं, बस बात खत्म। ऐसा साम्य भाव रहेगा, ऐसा संभाव होगा कि उसमें सुख शांति होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कोई किसी से के साथ कोई कुछ भी माने, अपने को लेना देना नहीं है, कुछ भी बोले, मैं तो अनामी तत्व हूं, नाम ही नहीं है मेरा, और उनका कोई गाजना है, मैं इधर आता ही नहीं, इसकी कोई पहुंच नहीं है, इनके भावों की कोई पहुंच नहीं है। ये प्रयोग की बात चली है, ऐसा विचार करना ऐसा नहीं लिया, प्रयोग करने की बात है।
सुगंध जी ने तीन बुलाया ना, ऐसी बात
कि बाहर में
विचार करो,
कैसा भी परिस्थिति बन जाए, अपने देह में जो परमात्मा स्वरूप आत्मा स्थित है, देह का बाहर का उदय का लक्ष्य छोड़ करके संभाव में आ जाना,
ये संभाव है,
संभाव मैंने विषम भाव नहीं उसको संभाव कहते हैं, राग और द्वेष और मोह ये विषम भाव है, और इससे रहित केवल ज्ञाता दृष्टा आत्मिक शांति वाला शांत परिणमन यही संभाव है, ऐसा करना। अब किसी उदय की परवाह कहां रही, कोई भी उदय हूं मैं तो
परमात्मा परमानंद,
वो एक आता है ना सर्प और नौलिया की लड़ाई, तो जहरीला जो सर्प होता है उसको डंक मारता है, तो लड़ते लड़ते एक वनस्पति आती है उसको नौलवेल कहते हैं, उसको सुन लेते हैं, उसका जहर विष उतर जाता है, ऐसे बाहर उदय को देखे तो राग द्वेष का विष चढ़ जाता है जीव को, कि उदय में इतनी प्रतिकूलता हुई, इतनी अनुकूलता है, उसने ये बोला, उसने ये कह दिया, उसने वो वैसा कर दिया, वैसा कर दिया,
तो कौन सी वनस्पति सुन,
अंदर में परमात्मा की जो वेल है, अमृत वेल, आत्मा अमृत वेल है, परमानंद स्वरूप आनंद का अमृत कुंड भरा है, उसमें डुबकी लगा देना, जहर सब खत्म, संभव हो जाएगा। ऐसा ध्यान नहीं हो गए मुमुक्षु को शुरू में, तो जागृति में तो आ रहे, बात थोड़ी ये है कि यहाँ जागृति में आना है, किसी भी प्रकार का उदय हो स्वरूप की जागृति में रहो, फिर ध्यान में आ सकोगे।
बरोबर, जागृति में होवे तब आ सकते,
तब आ सकते। वरना तो ये कहेंगे कि भाई ये ध्यान ध्यान की बात तो कोई हुई योगियों की, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि की, हम तो रहे ये ग्रस्त में और साधारण संसार में के प्राणी हैं, हम कैसे करें ऐसे ध्यान। जागृति तो हो सकती है, ऐसी जागृति ग्रस्त अवस्था में भी हो सकती है, ऐसी जागृति हुए उसको ध्यान होता है, जागृति नहीं हुए उसको ध्यान नहीं होता है। ये सब बातें पर्याय में दुख है, इसलिए इस दुख को छुड़ाने के लिए पर्याय में सुख हुए कैसे हुए इसकी विधि बताने के लिए है। और ऐसे विधि बताने बावजूद बताने के बावजूद भी क्या है कि उस पर वजन नहीं देना है। दुख मिटेगा, सुख होगा, विषम भाव चला जाएगा, संभाव होगा, और पहले जागृति आएगी ऐसा नियम है, फिर ध्यान होगा, ये सब बात जो है तो दर्शाने के लिए, मिलान करने के लिए है। अपना जोर तो जो परमात्मा स्वरूप स्वभाव है उस पर रहना चाहिए, उसी का लक्ष्य, उसकी श्रद्धा और उस पर जोर, तीन बातें। ज्ञान में उसी का लक्ष्य, श्रद्धा में यही मैं हूं ऐसा अभेदपना, श्रद्धा के ज्ञान में भी लक्ष्य में अभेदपना, मैं ऐसा, मेरा ऐसा स्वरूप है, और उसी विषय का जोर चलना चाहिए, बाकी सब जानने की बात है।
बराबर,
कैसा करना, क्या करना, उल्टा ये होगा, सुल्टा ये होगा, ये सब जानने की बात है।
वजन नहीं आता,
वजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से दुख होता है, ऐसा होने से सुख होता है, ये सब बात जानने की,
ये विधि है।
अवलंबन की बात हो, अवलंबन कहीं भी नहीं लेना है,
अवलंबन
कहीं भी
परमात्मा के ऊपर अवलंबन लेना
है, सत्य ज्ञान और परमात्मा स्वरूप का अवलंबन लेना है, और सब किसी बात का अवलंबन ले नहीं लेना है, क्योंकि पर्याय जो है वो खुद तो अवलंबन लेने वाली है, अवलंबन लेना उसका कार्य है, उसका ड्यूटी है, उसका धर्म है। वो तो स्वयं का अवलंबन नहीं लेती, जो परमात्मा स्वरूप है उसका अवलंबन लेना यही इसका धर्म है। इस धर्म को छोड़ करके किसी भी पर्याय का अवलंबन नहीं हुए, ये सभी बात पर्याय की चलती हो, उस वक्त में ऐसा लक्ष्य साथ ही साथ रहना
चाहिए,
चाहिए।
बराबर,
ऐसा ऐसी जागृति रखना, ऐसा ध्यान होना, लेकिन फिर भी इस पर वजन नहीं, इस पर जोर
नहीं, नहीं। ये वजन तो एक ही परमात्मा,
परमानंद स्वरूप आत्मा, उसका ध्यान, उसका अवलंबन, श्रद्धा, लक्ष्य और जोर एक ही जगह, सभी गुणों के परिणमन का केंद्र स्थान, एक निज परमात्मा के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, ये बात मुख्य रख करके, और इस बात का अवलंबन छोड़े बिना फिर पर्याय की जितनी बात है सब जानने के लिए।
અવલંબન લેવું
ધર્મ છે, અવલંબન પરમાત્મા સ્વભાવ, ધ્રુવ સ્વભાવ કા અવલંબન લેના યહી પર્યાય કા ધર્મ હૈ, અગર ધ્રુવ સ્વભાવ કા અવલંબન પર્યાય નહીં લેતી હૈ તો વો પર્યાય અધર્મ મે હૈ, ધર્મ મે નહીં, યહી અધર્મ હૈ।
ધર્મ એટલે નિત્ય ફરજ,
धर्म धर्म में यही स्वभाव, धर्म में यही फर्ज, यही ड्यूटी, यही सत्य और सब, यही सम्यक और सब असम्यक।
उपयोग बाहर निकला के जम का दिख सुन लो तो कह
रहे मन बाहर निकल वो ज्ञान और आनंद प्राण का घात करता है, जैसे यमदूत प्राण को हरता है, ऐसे ज्ञान और आनंद प्राण में आत्मा का उसको नाश करने वाला है, इसलिए यमदूत कहते हैं।
अभी छोटी बात बोलते था प्रिय मार क्यों भेजे, अभी स्पष्ट बात बोलते था प्रिय मार क्यों भेजे।
पर्याय बार जाती है तो पर्याय जाती है, खुद खुद मिल जाता है, ऐसा पकड़ में रखो पर्याय पीछे आ जाएगी।
बराबर
ऐसी बात स्पष्ट है लेकिन पर्याय में स्पष्ट रहना चाहिए श्रद्धा ज्ञान और पुरुषार्थ में। बात स्पष्ट है, वस्तु मौजूद पड़ी है लेकिन पर्याय नहीं देखती है तो नहीं देखती है। जैसे किसी ने ये पूछा तो इतना बड़ा समुद्र है, कितना
इतना बड़ा
कि सामने किनारा नहीं दिखता, पानी पानी दिखता है सैकड़ों मील तक, और फिर मुंह उल्टा करके खड़ा हो जाए हमको तो पानी का एक बिंदु नहीं दिखता है।
कैसे दिखे उल्टा खड़ा है,
पीछे रह गया समुद्र और समुद्र के उल्टी दिशा में अपना मुख रखे और फिर पूछे कि यहाँ तो पानी का एक बिंदु नहीं दिखता है, तुम बोलते हो तो बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, एक पानी का बिंदु भी नहीं है, सारी पहाड़ी पहाड़ी है, सब पत्थर ही पत्थर है। बात स्पष्ट है, वस्तु मौजूद है लेकिन पर्याय उल्टी चले तो वो पड़ा रहेगा, परमात्मा अनंत काल से पड़ा है,
वो तो है,
तो है ही
परमात्मा है।
उनकी धीरज खुटने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है, अनंत काल तक वो रहेगा अपने स्वभाव में, चाहे निगोद में जाए। अपने में अपने सम्मुख नहीं रहता, अपने सम्मुख रहने में सुख है फिर भी अपने सम्मुख नहीं रहता, तो वो तो स्वतंत्र है, पर्याय है, जो
स्वतंत्र
स्वतंत्र है, पर्याय की स्वतंत्रता की बहुत बात चलती है, इसलिए तो उसका सत्कार भिन्न बोल दिया, पर्याय स्वतंत्र है इसलिए।
देवाधिदेव श्री सुमंगल भगवान नो जय, परम कृपाओ श्री महान गुरुदेव नो जय, विश्राम जय, धार्म जय हो, जय हो।